ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे योगी जीवन वाले हैं, तो जैसे कहा कि जीवन एक या दो घंटे की नहीं होती, लेकिन जीवन तो सदा ही होती है, और इसीलिए राजयोगी निरंतर योगी हैं। तो जो योगी आत्माएं हैं, उन्हें ज्ञान और योग की शक्ति से कुछ ना कुछ ऐसी विशेषताएं, शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, जिन्हें हम दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां कहते हैं। तो वो सदा ही ऐसे विशेषता से संपन्न रहते हैं। वो श्रेष्ठ स्मृति, ईश्वरीय स्मृतियों में रहने वाले होते हैं। कभी भी मन में व्यर्थ चिंतन या पर चिंतन, किसी भी परिस्थिति को लेकर के मन में प्रश्न उठे, ऐसा कम होता है, क्योंकि तीनों कालों का ज्ञान और ड्रामा के राज को समझते हैं। तो फिर क्यों, क्या, कैसे इन प्रश्नों में न जाकर के कल्याण का बिंदु लगाने की ताकत उनके अंदर होती है। तो बड़ी परिस्थिति को भी छोटा बना सकते हैं, यानी पहाड़ को राई बनाते हैं, राई को पहाड़ नहीं बनाते हैं। उनके बोल सदा ही मधुर सुखदायी होते हैं। बोल दूसरों के हिम्मत को बढ़ाने वाले, उनमें उमंग, उत्साह, आशा का संचार करने वाले होते हैं। क्रोध में आकर के कई बार दुनिया में हम देखते हैं, लोग छोटी छोटी बातों में गुस्से में आ जाते हैं, फिर कटु वचन बोलते हैं, दुख देने वाले बोल बोलते हैं। तो योगी ऐसे वचन नहीं बोलते। दुश्मन के प्रति भी उनका व्यवहार ऐसा नहीं होता है। जापान के एक संत थे, कागावा नाम था उनका, और उन्हें जापान का गांधी माना जाता रहा। तो उनका एक दोस्त था जो उनसे बहुत ईर्ष्या करता था, क्योंकि उनका बहुत सम्मान होता था जापान के अंदर, लोग उन्हें बहुत मानते थे। तो उससे वो सहन नहीं होता था। तो उसने एक बार निश्चय किया कि रात को जब सो रहे होंगे तो मैं इनकी हत्या कर दूंगा। तो वो रात को तलवार लेकर के पहुंच गया उनके निवास पर। पर जैसे ही वो उनके बिस्तर के पास पहुंचा, तलवार निकाली, उतने में वो संत कागावा की नींद खुल गई, तो वो घबरा गया, तो तलवार हाथ में ही रह गई। लेकिन जब कागावा ने उनको देखा, समझ गए कि मारने के लिए आया है, तो भी उन्होंने उसको बहुत प्रेम से देखा। ऐसा मृत्यु के भय का भाव या नफरत का भाव उसके प्रति नहीं। और फिर भगवान से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, इसका भी कल्याण हो, इनको सद्बुद्धि मिले। तो जब उसने ये सुना तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया कि मैं क्या भाव लेकर के आया और ये मेरे प्रति क्या कह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा के जीवन में भी ऐसी घटनाएं हुई। एक उनको सरदार जी मारने के लिए आए, जो समाज था उस समय का, वो समाज जो है वो जैसे कि दुश्मन हो गया और कहा कि ब्रह्मा बाबा ही नहीं रहेंगे तो फिर ये सत्संग अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन जब वो आया मारने के लिए, तो उसको शिव बाबा के द्वारा साक्षात्कार हो गया, जो उनके गुरु नानक देव जी थे, उनका साक्षात्कार हो गया। और जब बाबा को उसने बताया, तब भी बाबा ने उसके प्रति शुभ भावना रखी, उसके प्रति कल्याण की भावना रखी। तो ये योगी के लक्षण है कि वो दुश्मन को भी दुश्मन नहीं समझता, दुश्मन को भी अपना दोस्त, ग्लानी करने वाले के प्रति भी वैर भाव नहीं। ऐसे ही उनके कर्म कुशल होते हैं, कहते हैं योग येशु कर्म कौशलम, क्योंकि योगी जो है वो कर्म योगी होता है, परमात्मा की याद में परमात्मा के साथ में रह करके कर्म करते हैं, समझते हैं करण करावनहार परमात्मा है, मैं निमित्त हूं, और इसीलिए कार्य कम समय में अधिक कर लेते हैं, क्योंकि वो ईश्वरीय शक्ति उनके साथ जुड़ जाती है। और उनकी जो पर्सनालिटी होती है योगियों की, वो है रूहानी पर्सनालिटी, उनकी दृष्टि आत्मिक दृष्टि, वृत्ति शुभ भावना की, शुभ कामना की, सबके प्रति कल्याण की दृष्टि होती है, वृत्ति होती है, और चेहरे पर पवित्रता की झलक और फलक दिखाई देती है, क्योंकि सदा एक बाबा दूसरा न कोई, ये उनकी स्मृति में रहता है। बाबा के साथ ही सर्व संबंध का अनुभव करते हैं, भले ही संबंधों में रहते हैं, सबके साथ संबंध भी निभाते हैं, लेकिन देहधारियों के साथ लगाव झुकाव या मोह में नहीं आते, लेकिन मेरा बाबा है, बाबा ही मेरे जीवन का आधार है, मेरा संसार है, तो उसके कारण वो रूहानियत की पर्सनालिटी होती है। और हम मम्मा बाबा के जीवन में देखते रहे कि उनका जो व्यक्तित्व था वो चुंबकीय व्यक्तित्व था, लाखों के बीच में भी वो बिल्कुल अलग दिखाई देते थे। जो योगी आत्माएं होती हैं वो सदा संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। संतुष्टता का आधार बेहद की प्राप्तियां जो बाबा ने कराई हैं, जो सर्व खजाने बाबा ने दिए हैं, जिसे कहा प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के जीवन में या ब्राह्मणों के खजाने में। तो सांसारिक इच्छाएं या आसक्तियां नहीं होती हैं, थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं, और संतुष्टता के आधार पर प्रसन्न, सदा ही खुश रहते हैं हर परिस्थिति में। जैसे कोई भी व्यक्ति आ जाए हिसाब किताब चुप्तु करने वाला, या प्रकृति का भी कोई ऐसा पेपर आ जाए, अपने तन का भी कोई हिसाब किताब आ जाए, कोई भी स्थिति में सदा वो आत्मा संतुष्ट रहती है, क्योंकि अपनी प्राप्तियों की स्मृति है, और जहां प्राप्तियां हैं वहां संतुष्टता होती, अप्राप्ति असंतुष्टता का अनुभव कराती है। वो निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय हानि लाभ सुख दुख में स्थिर रहता है। जो योगी होता है उसकी विशेषता है कि वो, हम कहेंगे कि अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है या हमें सफलता मिलती है तो खुश रहना या उसमें हम स्थिर रहें वो तो सहज है, लेकिन कोई ग्लानी करे या कोई असफलता या दुख की स्थिति पैदा हो जाए तो भी मन खुश रहे, ये योग की शक्ति है जिसको स्थिर चित्त कहा जाता है। और वही बाबा के जीवन में भी देखा, ब्रह्मा बाबा को देखते थे कि लौकिक जीवन में तो वो बहुत सम्माननीय थे, लेकिन जैसे ही शिव बाबा की प्रविष्टता हुई, बाबा का कार्य शुरू हुआ, उसके बाद पूरे समाज से उनको निंदा और ग्लानी सुननी पड़ी, लेकिन फिर भी बाबा सहनशील रह करके, हिम्मत रख करके, बिल्कुल अच्छा लटल अडोल रहे, उसके प्रभाव में नहीं आए, क्योंकि पता था कि ये शिव बाबा का कार्य है। तो इस तरह से कितनी और भी बातें, यज्ञ में कई प्रकार के विघ्न आए, बेगरी पार्ट भी चला, लेकिन फिर भी बाबा की स्थिति सदा अचल रही, तो हर परिस्थिति में कैसे भी स्थिति है, लेकिन उसको भी परिवर्तन करने की शक्ति ये योगी आत्मा के अंदर होती है, और वो सभी को स्वमान और सम्मान देने वाला होता है। स्वयं भी स्वमान में रहते हैं, जो बाबा ने श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाई हैं स्वमान की उसमें रहते हैं, और सर्व को जैसे बाबा ने भी सम्मान दिया, बाबा ने बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया, बहुत ऊंची नजर से देखा कि ये भविष्य में विश्व कल्याणकारी बनने वाली आत्माएं हैं। ऐसे ही जो कुमार थे उनको ये महात्माओं को भी चैलेंज करने वाले, ये असंभव को भी संभव करने वाली आत्माएं हैं, क्योंकि आज के समय में पवित्रता की धारणा को दुनिया असंभव समझती है, लेकिन कुमार कुमारियां ऐसे वातावरण में रहते हुए भी पवित्रता को धारण करके चलते हैं, बाबा ने उस नजर से उनको देखा। ऐसे ही जो बुजुर्ग थे उनको हमसे समझते हुए, मेरे ही समान ये अनुभवी आत्माएं हैं, उस सम्मान से देखा। जो भी बांधेलियां थी, जो बांधेलियां याद में नंबर वन जाने वाली हैं, उस नजर से उनको देखा। तो जो हरेक की विशेषता थी उससे उनको सम्मान दिया, हरेक को आगे बढ़ाया, बाबा ने अपने से भी आगे बढ़ाया। हम सुनते हैं जैसे बाबा हमेशा कहते थे, मम्मा मेरे से भी अच्छा भाषण करती है, बच्चे मेरे से भी ज्यादा सेवा करते हैं। तो ये सम्मान देना, उसके कारण पूरे कल्प सम्मान के अधिकारी बन गए। तो हमें बाबा को फॉलो करना है, हर आत्मा को उसके आदि अनादि स्वरूप में देख करके, जो उसका सम्मान है वो उस सम्मान की दृष्टि वृत्ति और व्यवहार में आना है। से ही योगी संपूर्ण समर्पण होता है, तन मन धन संबंध में समर्पित बुद्धि, यानी पूरी तरह ट्रस्टी, सब कुछ तेरा। भक्ति में कहते थे तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, लेकिन सिर्फ कहते थे। लेकिन अभी बाबा हमें कहते हैं कि सब बोझ अपने मुझे दे दो, मेरा नहीं सब कुछ तेरा है। और जब हम ट्रस्टी हो गए तो हम डबल लाइट हो जाते हैं, हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। सब जिम्मेवारी बाबा की है, सब बोझ बाबा के ऊपर है। तो समर्पित बुद्धि जितना होंगे उतना निश्चिंत होंगे, और सदा निश्चय बुद्धि बाबा के ऊपर तो विजयी भी रहेंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, जो हमें बाबा कहते हैं। ऐसे ही योगी आत्माएं सत्यता की शक्ति वाली होती हैं, क्योंकि जो सत्य बाप है, जो सत शिक्षक है, सत गुरु है, उसने हमें सत्य ज्ञान दिया है। उस सत्य ज्ञान के आधार पर ही शिव बाबा सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, या कहेंगे हमें सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। तो उस कथा को सुन करके हम उतने श्रेष्ठ बनते हैं। तो वो सत्यता की शक्ति जो सच्चाई और सफाई है, वो हमें बाबा के दिल तख्त नशीन बनाती है। बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी, भगवान भी उन पर राजी होता है जो सच्चे दिल वाली आत्माएं हैं। सत्यता की शक्ति का पालन करने में कई बार कठिनाई जरूर आती है, लेकिन सत्य की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन डूबती नहीं है, ये हम सब जानते हैं। और योगी न्यारा और प्यारा होता है, देह से न्यारा, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों के आकर्षण से, जितना न्यारे होंगे उतना ही परमात्मा के प्यारे होंगे। तो ये न्यारे होने की शक्ति, जिसे कहा कि एक कछुआ होता है, कछुए की विशेषता होती है कि वो जब चाहे अपनी कर्मेंद्रियों को कार्य में लगाए, जब उसको खाना है चलना है, और जब चाहे जब उसको कोई लगता है कि संकट है, कोई ऐसी स्थिति है, तो तुरंत अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है, तो वो न्यारा हो जाता है। तो ऐसे ही हम भी देह से न्यारे होकर अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, अंतर्मुखता की गुफा में चले जाते हैं, और वो शांति, सुख और आनंद की स्थिति है। हम न्यारे होकर के बाबा के पास परम धाम भी चले जाते हैं, वतन में चले जाते हैं, तो हमें सहज ही परिस्थितियों से वो ऊपर उठा देता है और बाबा का प्यारा बना देता है। तो ये न्यारे और प्यारे होने की विशेषता योगी में ही होती है, जिसको कहेंगे हम अनासक्त वृत्ति होती है, कर्मेंद्रियों से डिटैच होने की पावर। उसके साथ साथ कर्मेंद्रियों के अधिकारी भी होते हैं, न सिर्फ स्थूल कर्मेंद्रियां लेकिन सूक्ष्म कर्मेंद्रियां भी जो हमारी हैं, मन बुद्धि संस्कार। मन ही विशेष जो है हमारा, उसको वश करने की जरूरत है, मन के अधिकारी होना, यानी मन पर हमारी कंट्रोलिंग पावर हो। जब चाहे हम मन को स्टॉप करके बाबा में एकाग्र कर सकें, या जिस स्थिति में अपने मन को स्थित करना चाहें उस स्थिति में हमारा मन स्थित हो जाए। अगर हम बिंदु रूप स्थिति में मन को स्थित करना चाहते हैं, फरिश्ता स्थिति में मन को स्थित करना चाहते हैं, अव्यक्त स्थिति में मन को स्थित करना चाहते हैं, तो वो तब होगा जब मन के ऊपर हमारी कंट्रोलिंग पावर है। नहीं तो हम चाहेंगे कि हम बाबा के पास बीज रूप स्थिति में, बाबा के साथ लगन में मगन, लवलीन स्थिति का अनुभव करें, लेकिन मन को कोई ना कोई बात खींच लेती है, तो वो एकाग्रता नहीं हो पाती है। और उसके लिए बाबा कहता है बहुत काल का अभ्यास हमारा है, तब जाकर के अंत समय में जो जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है वो एक सेकंड का ही होगा। एक सेकंड में ही मन को बाबा में लगा लेना है, तब हम पास विद ऑनर हो सकेंगे। तो मन पर अधिकार, हमारी बुद्धि पर अधिकार, जो हमारे संस्कार हैं, वो संस्कार भी हमारे बाबा के समान हों, ईश्वरीय संस्कार इमर्ज रूप में रहें, माया के संस्कार नहीं, जो मध्य के संस्कार हैं बाबा कहते हैं वो नहीं, वो इमर्ज ना हो, लेकिन जो हमारे ईश्वरीय संस्कार हैं, बाबा के संस्कार हैं सदा सदा स्नेह के, सदा सुख देने के, सदा शांति के, सदा रहम के, सदा कल्याण के, दातापन के, वो संस्कार हमारे इमर्ज रूप में रहे, तो कर्मेंद्रियों पर हमारा अधिकार हो। योगी त्यागी तपस्वी सेवाधारी होते हैं। तो त्याग माना स्थूल भी, जो हम त्याग की बात करते हैं कि थोड़े में हम संतुष्ट हैं, और साथ साथ जो हम देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ का त्याग, उसे न्यारा भी होना है और उसका त्याग भी है। उसके साथ साथ विकर्मों का भी त्याग, विकल्पों का भी त्याग। विकर्मों का त्याग करके श्रेष्ठ कर्म ही सदा हम करें, और सदा हम विश्व सेवाधारी हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सदा अपने आप को सेवाधारी समझा, हालांकि वो अथॉरिटी थे, स्वयं भगवान का रथ थे, लेकिन अथॉरिटी होते हुए भी सदा अपने आप को बच्चों का सेवाधारी, मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट कहलाया। तो एक योगी सदा ही सबका सहयोगी होता है, सेवाधारी समझ करके वो बहुत निर्माण चित होता है, और उससे निर्मलता होती है उसके अंदर, और तभी हम सबको सुख देते हुए उनका कल्याण कर सकते हैं। तो इन सब गुणों और विशेषताओं से संपन्न योगी जीवन में बाबा ने हमें बनाया है, तो अपनी इन विशेषताओं को चेक करते हुए हमें आगे बढ़ाते रहना है, इसमें संपन्न बनना है, तभी हम बाबा के समान, क्योंकि ये मास अव्यक्त मास है, बाबा के समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति का बनाने का मास है, तो हम बाबा के समान बन पाएंगे। तो अभी कुछ मिनट हम योग अभ्यास करेंगे, 5 मिनट।
प्रभु का वरदान है, बरदान।